ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचा लंबं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सन 2012 के कृष्ण कथा जो कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, इसके लिए आप सबको श्री श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर में स्वागत है, जहां से पिछली साल कथा रुकी थी वहीं से हम आज प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम दो शब्द श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। वैसे श्रीमद् भागवत तो वैदिक शास्त्रों में से सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी सद्गुरु हैं जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों के आधार पर ही भगवत भक्ति का संदेश सारे दुनिया को दिया है। शास्त्रों के बाहर हम कोई भगवत कथा नहीं कर सकते। अपने मानसिक चिंतन में हम भगवान के बारे में ऐसे कुछ सोच विचार नहीं कर सकते कि मेरे ख्याल में भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, नहीं। तो वैदिक शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। शब्द ब्रह्म कहते हैं वैदिक शास्त्रों को। शब्द हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। वैदिक शास्त्रों के आदेश, इनको शब्द ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ये शब्द साधारण शब्द नहीं है, ये भगवान की वाणी है। और इन समस्त प्रकार के वैदिक शास्त्रों में से, जिनमें की चार वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, पुराण, उपनिषद इत्यादि सम्मिलित हैं, इनमें से श्रीमद् भागवत पुराण ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष करके वैष्णवों के द्वारा। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः। इसका अर्थ ये है कि वैदिक शास्त्र जो कि एक कल्पतरु के समान है, ये श्रीमद् भागवत उनका पका हुआ फल है। वैदिक शास्त्रों को निगम भी कहा जाता है, निगम जो नीचे की ओर आता है, कैसे भगवान से प्रारंभ होकर गुरु शिष्य परंपरा से आते हुए हम तक पहुंचता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों को निगम कहते हैं। और इन शास्त्रों में वो समस्त प्रकार के ज्ञान उपलब्ध हैं जो हमारे प्रसन्नता के लिए, हमारे संतुष्टि के लिए, हमारे जीवन की पूर्णता के लिए, जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे कल्पतरु भी कहा जाता है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। तो गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत इस वैदिक कल्पतरु का पका हुआ फल है। और विशेष करके शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये कथा निकली है, इसलिए ये और भी मीठा है। वैसे तो पहले भी मीठा था, अब अमृत तुल्य हो गया है, बल्कि वास्तविक अमृत ही है। जो दुनिया का अमृत है, तथा कथित अमृत, उदाहरणार्थ जो देवलोक में देवगण पान करते हैं, तो वो अमृत हमें केवल लंबी आयु प्रदान कर सकता है, भौतिक सुख थोड़ा बहुत प्रदान कर सकता है, परंतु वास्तव में हमें अमर नहीं बना सकता। परंतु ये श्रीमद् भागवत की कथा न केवल सुनने के लिए बहुत मधुर है, बहुत सुख प्रदान करने वाली है, परंतु साथ साथ यही एक कथा है या ग्रंथ है जो हमें मृत्यु से पार कर सकता है। इसलिए शुक मुखात अमृत द्रव संगीतम, तो शुकदेव गोस्वामी ने इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा की है कि हर एक प्रकार का व्यक्ति इसको समझ सके, इसको सुन सके, और ऐसे श्रवण के द्वारा उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके। इसलिए इसी श्लोक में कहा गया है, पिबत भागवत रसम, तो ये जो भागवत का रस है, इसका पान करना है भावुक लोगों, है जो रसिक लोग हैं, रसिका भुवि भावुका। तो जो लोग मुक्त अवस्था में हैं उनके लिए भी ये बहुत रसमय है विशेष करके, और जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी बताया गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रतिः क्वचित्। इसका मतलब है कि सर्व वेदांतों का सार, सर्व वेदांत शास्त्रों का सार ये श्रीमद् भागवत है। तद् रसामृत तृप्तस्य, जब कोई व्यक्ति इस भागवत के रस के अमृत का पान करके संतुष्ट हो गया है, फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, वो अन्य किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रखेगा। तो श्रीमद् भागवत ये भक्ति शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ है, समस्त शास्त्रों का शिरोमणि है, चूड़ामणि शास्त्र है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए इस शास्त्र को हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इन विषयों के ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, हमारे जीवन में इन सिद्धांतों को उतारने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में स्थापित कराई। हर दिन सुबह भागवत प्रवचन होता है, हर एक श्लोक की चर्चा होती है, क्रम से शुरुआत से लेकर पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर अंत तक ये कथा चलती है। एक दैनिक अभ्यास है ये श्रीमद् भागवत का, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसका सतत पाठ और श्रवण अति आवश्यक है। विशेष करके जिन्होंने कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का ध्येय बनाया है, उनके लिए तो ये अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में भगवान श्री कृष्ण और उनके विभिन्न अवतारों के लीलाओं का वर्णन है। वैसे श्रीमद् भागवत की रचना इसलिए हुई थी कि नारद जी ने व्यासदेव को समझाया था कि आपने इतने सारे शास्त्रों की रचना की है, उपनिषद हैं, पुराण आदि हैं, महाभारत भी है, और इनमें अवश्य आपने भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की है, परंतु केवल इधर उधर चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण आपके द्वारा विरचित शास्त्रों के सार नहीं रहे हैं, हालांकि हैं लेकिन ऐसे प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अन्य शास्त्रों को पढ़ के लोगों को ऐसे लगेगा कि इंद्रिय तृप्ति करना यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसे किसी शास्त्र की रचना करें जिसमें केवल श्री हरि, श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके सौंदर्य आदि का वर्णन हो। तो व्यासदेव जी ने फिर श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके पहले व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, यद्यपि उन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की थी, फिर भी उनका हृदय कुछ बेचैन सा था। परंतु अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, तब उनका हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों में अनेक विषयों का वर्णन है और अनेक अवतारों के लीलाओं का वर्णन भी है। इनमें से दसवां स्कंद जो है, दशम स्कंद, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस स्कंद में विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। तो क्या अन्य अध्यायों में या अन्य स्कंधों में भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं है? अवश्य है, परंतु उनके विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन प्रमुखतः पाया जाता है। जैसे कि सातवें स्कंद में नरसिंह अवतार का वर्णन है, नौवें स्कंद में श्री रामचंद्र भगवान का वर्णन है इत्यादि, परंतु दशम स्कंद में केवल श्री कृष्ण का वर्णन है। तो दशम स्कंद ये सबसे महत्वपूर्ण स्कंद माना जाता है। श्रीमद् भागवत की तुलना भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप से भी की जाती है। उनके चरण कमल जो हैं वो पहला स्कंद है, और ऐसे ऊपर चलते चलते हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद तक पहुंचते हैं, जो कि हंसमुख है। और भगवान श्री कृष्ण का ये मुखारविंद जो हल्की सी मुस्कान से सुशोभित है, वो दशम स्कंध कहलाता है। तो दशम स्कंध में 90 अध्याय है, और इन 90 अध्यायों में वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ है कि पहले 4 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन किया है, और उनके आविर्भाव के पहले जो भी घटनाएं हुई, यथा माता पृथ्वी का बेचैन होकर ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी ने अपने देवताओं को साथ में लेकर, पृथ्वी माता को साथ में लेकर क्षीरोदक सागर के तट पे जाना, पुरुष सूक्त प्रार्थना आदि करना, भगवान का आश्वासन देना देवताओं को कि मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा, फिर भगवान श्री कृष्ण का अंततः प्रकट हो जाना, इन सारी लीलाओं का वर्णन पहले 4 अध्यायों में है। और इसके बाद 35 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से लेकर अपनी किशोर अवस्था की लीलाओं को वृंदावन में प्रदर्शित किया। तो बहुत ही मधुर ढंग से शुकदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का वर्णन किया है। इसके बाद एक अध्याय जो कि 40वां अध्याय है, इसमें शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कैसे अक्रूर जी ने कंस के आदेश अनुसार श्री कृष्ण को वृंदावन से रथ बिठाकर मथुरा ले लिया, और फिर उसके बाद 11 अध्यायों में मथुरा लीला का वर्णन है, और फिर उसके बाद 49 अध्यायों में द्वारका लीला है। इस तरह से कुल मिलाकर 90 अध्याय श्रीमद् भागवत के हो जाते हैं। अब हमें याद रखना है कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने कितने वर्ष बिताए, 10.5 वर्ष प्राय, 10.5 से थोड़ा कम, या कर लगभग 10.5 वर्ष। और वृंदावन लीला के लिए शुकदेव गोस्वामी ने 35 अध्याय में वर्णन किया है। मथुरा लीला में भगवान रहे 18 वर्ष, लेकिन मथुरा लीला का वर्णन 11 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने समाप्त किया। द्वारका में श्री कृष्ण रहे, हाँ द्वारका में जब थे तो अन्य जगहों में भी गए थे, जैसे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर आदि, फिर भी ये सब द्वारका लीला कहलाता है। तो द्वारका लीला के समय श्री कृष्ण लगभग 100 वर्ष रहे, और इसलिए 49 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो देखा जाए तो वृंदावन में श्री कृष्ण सबसे कम समय रहे, फिर भी कृष्ण लीला, वृंदावन लीला का वर्णन 35 अध्यायों में हुआ है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने वृंदावन लीला के ऊपर अधिक जोर दिया था, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। और इस वृंदावन लीला के दौरान ही श्लोक जो अध्याय क्रमांक संख्या 29 से लेकर 33, ये जो पांच अध्याय हैं, इनको आचार्यों ने रास पंचाध्याय कहा है। रास पंचाध्याय का अर्थ है कि वो पांच अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मधुर रास लीला का वर्णन है, और ये दशम स्कंद के सबसे श्रेष्ठ अध्याय माने जाते हैं। परंतु इनको समझना आसान नहीं है। केवल जिनका हृदय वास्तव में बहुत शुद्ध है और जो कृष्ण तत्व को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले कृष्ण भक्तों से श्रवण करके साधन भक्ति के सुदृढ़ अभ्यास के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कराया है, और जिनके हृदय में श्रद्धा जागृत हुई है वृंदावन की लीलाओं के प्रति, ऐसे भक्त ही रास लीला को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अन्यथा ये पूरी संभावना है कि हम रास लीला को गलत समझेंगे, और अक्सर ऐसे दुनिया में देखा जाता है। तो इन पांच अध्यायों के बारे में अनेक गलत धारणाएं हैं समाज में। इसलिए पिछली बार हमारी कथा, पिछले साल जब कथा हुई थी, रास पंचाध्याय की कथा हुई थी, उसमें आपको याद होगा हमने रास लीला का वर्णन अधिक से नहीं किया था, बहुत संक्षेप में किया था, बहुत ही संक्षेप में। परंतु कई घंटों तक चर्चा इसी विषय पे हुई कि रास लीला तत्व क्या है, और रास लीला इसे सर्वश्रेष्ठ लीला क्यों हमें मानना चाहिए, ये क्यों शुद्ध है, और सही दृष्टिकोण क्या है रास लीला को समझने के लिए। तो इस तत्व की स्थापना करने हेतु हमने कई तर्क भी प्रदान किए थे, शास्त्रों पर आधारित तर्क, उन कुतर्कों का खंडन करने के लिए जो संसार के लोग करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की निंदा करते हैं। तो फिर इन पांच अध्यायों के चर्चा के बाद 34वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को एक सांप से बचा दिया, और आगे चल के उन्होंने कैसे शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया। 35वां अध्याय युगल गीत है। श्रीमद् भागवत में अनेक गीत हैं, न केवल दशम स्कंध में परंतु अन्य स्कंधों में भी, जैसे कि 11वें स्कंध में उद्धव गीत है, और इस उद्धव गीत के अंतर्गत भी अनेक गीत हैं, जैसे आइल गीत, पिंगला गीत इत्यादि। और श्रीमद् भागवत के अन्य स्कंधों में ऐसे सुंदर स्तुतियां हैं भक्तों द्वारा रचित, और श्रीमद् भागवत के इन दशम स्कंद में भी अनेक ऐसे गीत हैं। रास पंचाध्याय में है प्रसिद्ध गोपी गीत 31वां अध्याय, और इसके पहले 21वां अध्याय है वेणु गीत, और फिर ये 35वां अध्याय है युगल गीत, आगे चल के दशम स्कंद में है भ्रमर गीत, ऐसे कई गीत हैं। तो युगल गीत वो अध्याय, वो गीत है जिसमें 24 श्लोक हैं, 12 जोड़ियां हैं दो दो श्लोकों की, इसलिए इसे युगल गीत कहते हैं। इन श्लोकों का उच्चारण वृंदावन के गोपियों ने किया था जब रासलीला आदि समाप्त हो गई थी। रासलीला का वर्णन होने के बाद अब गोपियों को बहुत विरह की भावना हो रही है श्री कृष्ण के प्रति, जबकि दिन के समय श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में जाते हैं। तब गोपियां वृंदावन में ही रह जाती थीं और श्री कृष्ण वन में चले जाते थे। तो यहां तक चर्चा हुई थी पिछले साल, और इस साल कृष्ण कथा हम प्रारंभ करेंगे दशम स्कंद के 36वें अध्याय में से। और इस 36वें अध्याय का मुख्य विषय है, वैसे दो विषय हैं, एक है कि कृष्ण श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर का वध, और दूसरा विषय है कि नारद जी कंस के पास आते हैं और उनको ये गोपनीय बात बता देते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम देवकी के पुत्र हैं। इसके पहले कंस ने ऐसे सोचा था कि कृष्ण और बलराम नंद महाराज के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, परंतु अब उनको पता चला कि वास्तव में ये देवकी के पुत्र हैं। कंस ने सोचा था कि देवकी के सातवें गर्भ का पतन हो गया था, गर्भपात हो गया था, और आठवां जो संतान था देवकी और वसुदेव का, वो तो एक पुत्री थी, ऐसे कंस ने सोचा था। जो और घटनाएं हुई थी उनके बारे में कंस को पता नहीं था कि कैसे वसुदेव ने आठवें पुत्र को, जो कि स्वयं श्री कृष्ण थे, यमुना पार करके गोकुल में यशोदा मैया के पास में जाके रखा था, वो नहीं पता था कंस को। और ये भी नहीं पता था कि वास्तव में सातवें गर्भ ये बलदेव थे, श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार और उनके बड़े भाई, और उनका स्थानांतरण किया था योग माया ने रोहिणी देवी के गर्भ में। तो जब कंस को ये पता चला तो आग बबूला हो गया कंस, और वसुदेव और देवकी को मारने के लिए आया। तब कंस ने सांत्वना दी कंस को, नारद जी ने सांत्वना दी कंस को और कहा कि वसुदेव को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वसुदेव और देवकी के आठवें पुत्र आपको मारने वाले हैं। आप यदि देवकी और वसुदेव से को कुछ करोगे तो हो सकता है कृष्ण बलराम भाग जाएंगे, फिर आप उनको नहीं मार पाओगे। तो ऐसी चर्चा जो होती है इसका वर्णन भी हम बाद में सुनेंगे। तो सर्वप्रथम इस अध्याय का विषय है अरिष्टासुर का वध। अब वृंदावन में भी और वृंदावन के बाहर भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध क्यों करते हैं? किसी की हत्या करना ये तो कोई आध्यात्मिक कार्य जैसे नहीं दिखता है, और केवल साधारण तरह से ये हत्या नहीं हुई थी, इतना खून खराबा। जैसे नरसिंह देव भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो कैसे भयानक तरीके से किया, हिरण्यकश्यप के सीने को अपने नाखूनों से उन्होंने फाड़ दिया और फाड़ कर उनकी अथड़ियों को माला बना के अपने गले में पहन लिया। अब देखिए, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये एक तामसिक कार्य कहलाएगा। खून सब जगह जब शरीर पे होता है, सब जगह खून खून फैला होता है, मांस इत्यादि सब पड़े होते, तो ये तामसिक वातावरण होता है। और इस तरह से भयानक तरीके से कोई हत्या करता है किसी की, तो हम कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ा तामसिक कार्य कर दिया। परंतु यद्यपि भगवान श्री नरसिंह देव ने ऐसे हिरण्यकशिपु की हत्या की, परंतु भगवान श्री कृष्ण तमोगुण के अंतर्गत कभी नहीं है, वो तो सदैव अपने दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं। ऐसे केवल प्रतीत होता है कि ये एक तामसिक कार्य है। तो उसी प्रकार से अन्य असुरों का वध भी करते हैं जब भगवान विभिन्न अवतारों में, हमें जान लेना चाहिए कि ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, ये कोई साधारण हत्या के कार्य नहीं है। जब मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो ये राजसिक या तामसिक कार्य माना जाता है, अच्छा कार्य नहीं होता है ये। हाँ, भगवान के आदेशानुसार जैसे अर्जुन ने जब युद्ध किया तो वो तो दिव्य माना जाता है, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार हुआ था। अर्जुन ने अपनी स्वेच्छा से युद्ध नहीं किया, इसलिए अर्जुन का युद्ध करना भी दिव्य माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में भी असुरों का वध करते थे तो ये वध भी दिव्य है, ऐसे हमें जान लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब किसी की हत्या करते हैं तो उस व्यक्ति का लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? क्योंकि उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। वृंदावन में जितने भी असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, उन सबको संसार से मुक्त कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक गुण हैं, 64 प्रमुख गुण हैं। उनमें से एक गुण है हतारी गतिदायक। हतारी गतिदायक का मतलब है कि भगवान वो व्यक्ति हैं जो कि उन व्यक्तियों को वो ऐसी गति प्रदान करते हैं अपने धाम की, या आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं जिनकी हत्या वो करते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों की हत्या भगवान करते हैं उस व्यक्ति को भी इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान के धाम को पहुंच जाता है, चाहे निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है या कभी कभी जैसे पूतना के साथ हुआ गोलोक वृंदावन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कार्य सदैव दिव्य रहते हैं। भले भगवान श्री कृष्ण उस असुर का वध करते समय रोष या क्रोध व्यक्त करे, फिर भी हमें जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य, इस तरह के कार्य करने के पीछे केवल उनका शुद्ध प्रेम ही है, उनकी अनुकंपा है उस व्यक्ति के प्रति। भगवान एक ऐसे पिता हैं जो अपने सारे बच्चों से प्रेम करते हैं। जितने भी असुर हैं, चाहे वो बड़े से बड़े असुर भी क्यों ना हो, उनके प्रति भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। भले असुर लोग भगवान श्री कृष्ण से घृणा करें, द्वेष करें, परंतु भगवान उनसे घृणा नहीं करते हैं। भगवान का स्वरूप तो प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के हृदय में और कोई भावना नहीं रहती है। तो भगवान का क्रोध भी वो प्रेम ही है, इसलिए वो परम सत्य कहलाते हैं। परम सत्य का अर्थ ये है कि सदैव वो अपने दिव्य स्तर में स्थित रहते हैं, और दिव्य स्तर में केवल प्रेम ही प्रेम है। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने तो घोषणा की ही है भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ इस धरातल पर युग युग में। तो असुरों का वध करना ये भी तो भगवान का एक कार्य है, इसलिए तो भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने कार्य को संपन्न करते हैं। साथ साथ में हम कल्पना कर सकते हैं कि वृंदावन के निवासियों को कितना कष्ट पहुंचा होगा, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई असुर अवश्य वृंदावन में आता था। कई बार ब्रजवासियों को एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में जाना पड़ा, क्योंकि असुरों का इतना डर था। और एक जगह से दूसरे जगह जाते, वहां भी असुर आते, उस जगह को छोड़कर तीसरे जगह जाते, वहां भी असुर आए। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई श्री बलराम बड़े सक्षम थे, इसलिए बड़े आसानी से उन्होंने इन सारे असुरों का वध कर दिया। फिर भी यद्यपि व्रजवासियों ने अपनी आंखों के सामने ऐसे वध को देखा, फिर भी उनके मन में जो एक मीठी भावना थी, एक मधुर भावना थी श्री कृष्ण के प्रति, वो शिथिल या कमजोर नहीं हुई। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भगवान है, उन्होंने यही माना कि ये तो हमारा लाडला प्यारा श्री कृष्ण है, ये तो हमारा ग्वाल बाल है वृंदावन का। जब श्री कृष्ण ने असुरों का वध किया तो अपने ऐश्वर्य को, अपने बल को बखूबी प्रदर्शित किया, और ऐसे बल का प्रदर्शन हुआ जो कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। असुरों के वध करना एक साधारण काम नहीं था, क्योंकि ये जो असुर थे ये कोई साधारण असुर नहीं थे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली असुर थे। परंतु बाल्य अवस्था में भी, जबकि भगवान श्री कृष्ण केवल थोड़े दिन की आयु थी उनकी, उस समय उन्होंने पूतना का आसानी से वध कर दिया। तो यद्यपि व्रजवासियों ने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखा, उनके अतुलनीय बल के प्रदर्शन को भी देखा, फिर भी उनके मन में ये मधुर भावना हटी नहीं, कम नहीं हुआ। तो ये वृंदावन की खूबी है, विशेषता है, कि वृंदावन में वो मधुर भाव बढ़ते रहता है। बल्कि ऐसे ऐश्वर्य के प्रदर्शन के कारण उनका माधुर्य या उनका मधुर भाव और भी गहरा हो गया, और भी सुदृढ़ हो गया, और भी गाढ़ा हो गया। बल्कि अन्य स्थानों में हम देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं तो जो एक मिठास है प्रेम में, जो एक निकटता है भक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, और भक्त भगवान को एक ऐश्वर्य के दृष्टि से देखना शुरू करता है। जब भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का प्रदर्शन किया, तो अर्जुन के सख्य भाव में थोड़ा अंतर आ गया, वो सख्य भाव का जो मधुर प्रेम है वो थोड़ा प्रदूषित हो गया। प्रदूषित का अर्थ है इस संदर्भ में कि वो मिठास कम हो गया। परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं होता है। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ऐसे असुरों का वध करते हैं, और ग्वाल बाल और अन्य गोप गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण का और गुणगान करते रहते हैं, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि ये तो हमारा कृष्ण है, हमारे कृष्ण ने ऐसे किया। जैसे समझ लीजिए, बेलगाम का कोई लड़का है, ओलंपिक खेल में जाके स्वर्ण पदक प्राप्त कर लेता है, सब लोग कहेंगे हमारा लड़का है, ये बेलगाम का लड़का है, है ना। तो जब भी श्री कृष्ण ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध करते थे तो सारे गोप गोपियां ऐसे ही सोचते थे, तो हमारा कृष्ण है। तो इस तरह से व्रजवासियों के हृदय में मधुर भावना सदैव बनी रही। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि व्रजवासियों के लिए कितनी विकट परिस्थिति से विकट परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा, क्योंकि हर दिन ऐसे उनको तनाव रहता था, ऐसे कष्ट रहता था कि आज कोई असुर आएंगे और श्री कृष्ण को हानि पहुंचाएंगे। यदि वो ये जानते कि श्री कृष्ण भगवान हैं तो उनको डर नहीं रहता, क्योंकि भगवान तो सक्षम है अपनी रक्षा करने में। जब सारी दुनिया की रक्षा करते हैं तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो यदि उनके मन में ये भावना रहती कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो अवश्य वो डरे नहीं होते, चिंतित नहीं हुए होते। परंतु ऐसी भावना यदि उनकी हुई होती तो फिर वो मिठास भी नहीं रहता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के द्वारा उनकी दृष्टि ढक गई, और फिर ऐसे दिव्य दृष्टि, वृंदावन की विशेष दृष्टि के कारण उनको डर लगने लगा कि अरे एक के बाद एक असुर आ रहे हैं और श्री कृष्ण को कहीं हानि नहीं पहुंचे, ये तो नाजुक कोमल बच्चा है, ये कैसे अपनी रक्षा करेगा। और जब श्री कृष्ण बच जाते थे असुरों के आक्रमण के बाद, और बल्कि असुरों का वध उल्टा हो जाता था, तो ब्रजवासी सोचते थे कि ये तो शायद हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कार्यों के फल स्वरूप ऐसे हुआ है, हमने कोई पुण्य किए थे तो हमारे बच्चे को कृष्ण ने, भगवान ने ऐसे बचाया है। वो ये नहीं जानते थे कि उनका वो भगवान भी उनका बच्चा बन के आया है। और कई बार वो सोचते थे कि हो सकता है कि कोई देवलोक देवताओं ने आके कुछ किया होगा, बचाया है। इस तरह से कोई ना कोई ऐसे दूसरा कारण उनके मन में अवश्य आता था। परंतु श्री कृष्ण के अंदर इतनी ताकत कैसे आई, हालांकि श्री कृष्ण का शरीर इतना दिखने में तो कोमल था, नाजुक था, ऐसी शक्ति कहाँ से आई श्री कृष्ण के अंदर कि उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया और भयानक से भयानक असुरों का वध किया। ये बात एक हमेशा एक विडंबना की बात रहती थी ब्रजवासियों के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा करते थे, फिर सोचते थे अरे क्या परवाह नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, क्या फायदा है ऐसी चर्चा करने से, और फिर से लाड़ प्यार करने लग जाते श्री कृष्ण का। तो ऐसी चिंता ब्रजवासियों को रोज अनुभव करना पड़ा। तो हम पूछ सकते हैं कि ये वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, तो इतने बड़े भक्त होने के बाद भी इनके जीवन में इतना तनाव, इतना कष्ट, इतनी बेचैनी क्यों आई? भगवान ने उनको शांति क्यों नहीं दी अपने जीवन में? इसका उत्तर ये है कि भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि भक्ति करने से केवल हमें शांति मिलेगी। यदि हम भक्ति करते करते अनुभव, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। भगवत भक्ति ये केवल शांति के लिए नहीं है, ये दिव्य आनंद के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। तो ब्रजवासी गण यद्यपि बेचैन रहते, परंतु ये बेचैनी, ये कष्ट जिसका अनुभव उनको हुआ, ये साधारण संसार की बेचैनी या कष्ट नहीं थी, ये तो दिव्य आनंद था। जैसा कि हम पहले अनेक बार कह भी चुके हैं कि इस संसार का तथाकथित सुख वो दुख है। संसार का दुख तो दुख है ही, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकते, परंतु संसार का तथाकथित सुख भी सुख न होकर वास्तव में दुख है, क्योंकि संसार ही दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का आलय है, क्षण भंगुर है सब कुछ यहां। तो यहां संसार में सब कुछ दुख ही दुख है, परंतु भगवान के धाम में और भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर पे सब कुछ सुख ही सुख है, दिव्य सुख। चाहे वो भगवान के साथ में रहें, या ऐसे प्रतीत हो कि वो भगवान से दूर हैं, चाहे वो हंस खेल रहे हों भगवान के साथ में, जैसे कि जब ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते, उनके साथ में खेलते, हंसते, नृत्य करते, तो कितना आनंद आता था उनको, बहुत हंसते थे, तो वो तो आनंद था ही। परंतु जब कोई असुर आ जाता, या जैसे कब जब भीषण वर्षा हुई इंद्र द्वारा भेजी गई वर्षा, तो ब्रजवासी बहुत बेचैन हो गए। जब दावानल हुआ और आग में सब अटक गए थे, फंस गए थे, तब भी बच्चे और अन्य ब्रजवासी बहुत चिंतित हो गए थे, डर गए थे। तो ये जो डर है, ये चिंता है उनकी, ये भी दिव्य आनंद है। तो ये कैसा है शायद हम हमारे इस स्तर में जान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। तो ब्रजवासी गणों ने जो चिंता का अनुभव किया वो साधारण संसार का की चिंता नहीं है, वो भी एक दिव्य आनंद ही है। और भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को ऐसे परिस्थिति में डालते हैं उनकी शुद्ध भक्ति को और तीव्र बनाने के लिए, ताकि जो भी थोड़े बहुत कलमश उनके हृदय में हो, विशेष करके उन साधना सिद्ध भक्तों के लिए जो अनेक जन्मों की भक्ति इस भौतिक जगत में करने के बाद श्री कृष्ण की लीला में शामिल हुए थे, उनके हृदय में यदि लेश मात्र कोई कलमश हो भी तो वो भी नष्ट हो जाए और वो शत प्रतिशत पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। जब भक्त को कष्ट का अनुभव होता है तब वो श्री कृष्ण का आश्रय बड़ी तीव्रता से ग्रहण करता है, ये भक्त की पहचान है। यदि कोई भक्त कच्चा भक्त है तो कठिनाई के समय भगवान की और भी तीव्र आश्रय ग्रहण करने के बजाय वो भगवान के आश्रय को छोड़ ही देता है और फिर सोचता है मैंने इतनी भक्ति की फिर भी भगवान ने ऐसे परिस्थिति में मुझे डाला तो मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं। तो ऐसे कच्चे अवस्था में भक्त सोचता है, लेकिन भक्ति में जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो इस तरह से नहीं सोचता, फिर अपने कठिनाई को भी वो भगवान की कृपा ही समझता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतपाकम हृद्भाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी भी ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करता है, आपकी कृपा के रूप में इनको स्वीकार करता है, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, साथ साथ अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने कार्यों से वो आपकी सेवा में सदैव रत रहता है, तो वो निश्चित ही आपके धाम को प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि जब जीवन में कष्ट आते हैं उन्हें वो भगवान की कृपा समझ के अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें, बल्कि भक्ति में पीछे न हटें। माया हमें भक्ति से हटाने के का प्रयास करेगी, परंतु भक्त को चाहिए कि वो सुदृढ़ रहे अपने साधन भजन में। और भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ऐसे शुद्ध भक्तों को इस तरह की परिस्थिति में डालते हैं सारी दुनिया को उपदेश देने के लिए कि देखो मेरे भक्त ऐसे होते हैं, ये मेरे सच्चे भक्त हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित अवश्य होते हैं परंतु भक्ति के पथ से विचलित नहीं होते हैं, पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं भक्ति के पथ से, बल्कि उनकी भक्ति और भी बढ़ने लगती है। और हर बार हम देखेंगे जब भी कोई कठिनाई ब्रजवासियों के जीवन में आई तो कृष्ण कृष्ण कह के पुकारते हुए वो कृष्ण के पास आए, और अरिष्टासुर के वध के संदर्भ में भी हम यही देखेंगे। तो हम ये सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे महान भक्तों के द्वारा हम सबको सिखलाते हैं कि हमें या हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। तो खैर ये सब थोड़े बहुत कारण हैं कि भगवान ने ऐसे असुरों का वध किया, ये ऐसे अनेक लीलाएं हुई। साथ साथ भगवान वीर रस का आस्वादन भी करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, समस्त प्रकार के दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले हैं श्री कृष्ण, बल्कि ऐसे रसों का आस्वादन करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, रसराज हैं, और ऐसे रस की मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। तो ऐसे 12 रसों में एक गौण रस है, वीर रस। तो कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, इसलिए तो हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है। दुर्भाग्य ये है कि भगवान के अन्य गुणों को छोड़कर हम इस गुण का को बहुत मानते हैं। इस बारे में तो भगवान से हम गुण लेते हैं, भगवान ने युद्ध किया हम भी करेंगे, परंतु अन्य जितने भी गुण हैं वो भी आत्मा में तो हैं, बहुत कम मात्रा में, लेश मात्रा में हैं, अणु मात्रा में। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके इन गुणों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, अब अरिष्टासुर के वध के बारे में हम थोड़ा कुछ देखेंगे, एक विषय बस खोलेंगे, और इसके बाद कल हम पूरी तरह से आगे की चर्चा और जारी रखेंगे। इस 36वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कंस ने अरिष्टासुर नाम के असुर को भेजा, जिसने एक बैल का रूप धारण किया था। तो ये असुर ऐसे हुआ करते थे, इनकी योग शक्ति थी जिसके द्वारा वो अलग अलग शरीर धारण किया कर सकते थे। जैसे पूतना एक राक्षसी थी, परंतु कृष्ण के पास जब आई तो एक सुंदर युवती का रूप स्वीकार करके आई। किसी असुर ने बछड़े का रूप धारण किया, किसी असुर ने भवंडर का रूप धारण किया, किसी असुर ने शकट का रूप धारण किया। ऐसे ये असुर अनेक रूप धारण करने में सक्षम थे। तो अरिष्टासुर, इसने एक बैल का रूप धारण किया। बैल का रूप धारण करने के बाद जब कंस के द्वारा वो यहां भेजा गया, तो उसका प्रवेश वृंदावन में कैसे हुआ, और आने के बाद उसने क्या कार्य किया, और भगवान श्री कृष्ण किस तरह से उसका वध किया, और इस घटना के बाद नारद जी ने कैसे बातचीत की कंस से, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप कल शाम को यहाँ पे अवश्य आइएगा। और इस समय यदि आपके कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट हैं, हम प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि भगवान की सेवा करते समय जो जब हमारे मन में कोई तनाव आता है, तो वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? वो चिंता आध्यात्मिक है। यदि वो वास्तव में भगवान की सेवा के लिए ही चिंता हो रही है, तो फिर वो आध्यात्मिक है। लेकिन उस विचार में कुछ हमारे भी कुछ स्वार्थ मिला हुआ है, तो उस हद तक वो भौतिक है। जैसे हमें यदि चिंता हो रही है कि हमें उतना सम्मान नहीं मिला जितना हमें अपेक्षा करनी थी सेवा करते समय, तो वो जो चिंता है फिर वो भौतिक है। लेकिन हम चिंता कर रहे हैं, मंदिर बहुत साफ होना चाहिए, मंदिर का उत्सव बढ़िया होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से सारी व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो जब चिंता हम करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसी चिंता आध्यात्मिक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर चीजों को ऐन वक्त पर रखें, ताकि ऐन वक्त पर हम भाग दौड़ कर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ चिंता अपने आप के लिए लाएं कि ये आध्यात्मिक है। नहीं, जानबूझ के चिंता नहीं करानी चाहिए, ये तो हमारी लापरवाह का लक्षण है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सही समय से पहले से ही इतनी अच्छी तरह से योजना बनाएं, हमारे व्यवस्थापन को करें कि सब कुछ ठीक ठाक चले, कुशल मंगल रहे सब कुछ। और फिर हमारे योजनाओं को करने के बाद भी, प्रयास के बाद भी फिर कोई कुछ तनाव आए तो वो तनाव आध्यात्मिक है। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि भगवान है, इसका प्रमाण दो, इन लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए, विस्तार में बताइए। विस्तार में बताएंगे तो फिर सारी रात निकल जाएगी, इसलिए संक्षेप में ही बताएंगे। इसका उत्तर ये है कि हाँ, अवश्य यदि कोई व्यक्ति पूछे कि मुझे डॉक्टरी सीखना है तो हम उनको कहाँ भेजेंगे कि हम सिखाने बैठ जाएंगे उनको डॉक्टरी? नहीं, हम बोलेंगे आप मेडिकल कॉलेज में जाना, भर्ती होना, वहाँ आपको डॉक्टरी सीखने को मिल जाएगी। उसी तरह से आपको भगवान के बारे में जानना है तो फिर आप भक्तों के संग में आइए, क्योंकि भक्तों के संग में भगवान का ज्ञान मिलेगा, डॉक्टरों के संग में डॉक्टरी का ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह से सही संग में आने से सही ज्ञान मिल सकता है। हमें प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी आदि क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये राजसिक और तामसिक पदार्थ माने जाते हैं। और चॉकलेट भी खाना चाहिए क्या, ऐसे लिखा है इसमें? तो अधिकतर जो चॉकलेट है उसमें भी ऐसे कोई वर्जित पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं ये बाहर के चॉकलेट भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अब दर्शन का समय हुआ है, आप दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद पाइए और कल शाम को आइएगा। हरे कृष्णा।